आगे फरमा दिया कि अच्छा ये बात मुश्किल लगती है, कैसा हो सकता है। तो फिर पिछले साना देखिए अलम यजिद का यतीमन फावा, यहाँ अल्लाह के नबी सल्लम की यतीमी की बात को पेश किया गया। हम सीरत में बार बार पढ़ते हैं ये बात कि अल्लाह के नबी अभी अपनी माँ के पेट में ही थे कि बाप का साया उठ के यतीमी में पैदा हुए। माँ ने मोहब्बत दी, 6 साल हुई तो माँ भी चली गई, दादा के पास आ गए, 8 साल की उम्र में दादा भी चले गए। कितनी जुदाइयाँ, कितनी यतीमियाँ जमा हो गई। फिर चचा थे जो बाप बन के सामने आए, अबू तालिब, और आखिरी दम तक उन्होंने आपकी खिदमत की, मोहब्बत की। तो एक यतीम बच्चा जिसको दुर्र यतीम कहते हैं, दुर कहते हैं मोती को, यतीम कहते हैं तन्हा को। यतीम का लफ्ज़ अरबी में दो मानों में आता है, तन्हा होना अलोन, क्योंकि यतीमी के साथ ही उदासी आती है, अकेले बैठे होते हैं वो बच्चे। बच्चे माओ की गोद में होते हैं, उनको कई लोग उठाते हैं, प्यार करते हैं, और जो दूसरे हैं वो बेचारे डांटी खा रहे होते हैं, अकेले ही होते हैं। और इसी तरह लफ्ज़ यतीम के अंदर देर से मिलने का मानी आता है कि यतीम को भलाइयाँ और नेमतें देर से मिलती हैं। अमूमन माशरे का रिजेक्टेड ठुकराया हुआ बंदा होता है। बाज़ लोग यतीमी को ऐब समझते हैं, और बाप किसी का मर जाए तो कहते हैं कि देखा बाप नहीं है ना, अब इसको कुछ नहीं मिलना। हालांकि आप देखिए अल्लाह अपने नबी को दुनिया जहान की बादशाहत दे रहा है, बाप था तो बाप क्या देंगे, कोई नहीं देता। जवानी में बाप चले जाएं तो भी वही रब है सहारा, और अगर बचपन में बच्चों के सर से बाप चला जाए अल्लाह ही सहारा है। इसलिए अलम यजिद का यतीमन फआवा, कभी आप इसकी हिकमत पे गौर किया करें, क्यों अल्लाह के नबी सल्लम को बचपन ही में माँ बाप की मोहब्बत से महरूम कर दिया गया। कई इसके मुख्तलिफ पहलू आपके सामने आएंगे। एक तो बात मुझे जो वाजह समझ आती है वो क्या है कि अल्लाह के नबी को हर गम मिला जो किसी इंसान के दुखी होने की दलील समझा जाता है, और उसके कामयाब ना होने के रास्ते की रुकावट बन जाता है। हाँ ये तो बेचारा ऐसा, ये यतीम, इन्होंने क्या करना था। और अल्लाह के नबी को ये गम क्यों मिले, ताकि लोगों को मिले बाद में वो गम, तो वो पता हो कि अल्लाह के नबी को भी मिले थे। तीसरी वजह ये भी समझ आती है कि इन गमों से इंसान अपने आप को कोई बहुत महरूम ना समझे, कोशिश करेंगे तो यतीम भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए बचपन में बाप ने, किसी बच्चे का तसव्वुर सोचे, फलां बच्चा पैदा होने से पहले बाप मर गए, लोग कहेंगे अफसोस, सो सैड, 2 साल की उम्र में माँ मर गई। आप अपने इमेजिनेशन में कोई बच्चा लाएं और उसको सोचें 2 साल की उम्र में माँ भी चली जाए, फिर बाकी भी चले जाएं, फिर ख़ानदान बिरादरी, और फिर उसके बाद जवानी में ये इल्ज़ाम लगे। फिर आप देखें बेटियाँ, ज़िंदगी में 2 बेटियाँ मरी, 2 बेटियों को तलाक हुई, 2 या 3 बेटे आपके फौत हुए आपके सामने, आपकी नवासियों का इंतकाल हुआ, आपकी 3-4 बीवियों का इंतकाल आपकी ज़िंदगी में हुआ, आपके सगे चचाओं का इंतकाल हुआ जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत थी, इतने मुखलिस सहाबा कराम जो दीन के प्यारे दोस्त होते हैं उनका आपकी ज़िंदगी में इंतकाल हुआ, आपकी गोद में से आपके बच्चे की जान लेके चले गए मलकुल मौत। क्या बताया जा रहा है कि नबी मुख्तार कुल नहीं है? अगर वो मुख्तार कुल होता तो कम अज़ कम अपने बाप को या अपने बच्चों को तो बचा लेता। असल बात यह है कि लोग जब ग्रेजुएशन पर आते हैं तो फिर बहुत गलतियाँ खाते हैं, वजह तक दौलन बहदा, और उसने आपको दौल पाया और उसके बाद रास्ता दिखाया। इस आयत के ऊपर बहुत ही मुख्तार तफसीर की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह के नबी के नाम के साथ जब दौल का लफ्ज़ आता है तो लोग बाज़ थोड़े इरीटेट फील करते हैं, उनको थोड़ी उलझन आती है कि अल्लाह के नबी कब भटके हुए थे, और हकीकत है कि अल्लाह के नबी नहीं थे भटके हुए। आपने तो नबूवत से पहले भी कभी गैर अल्लाह का ज़बीहा नहीं खाया, कभी शराब नहीं चखी, कभी जुए के करीब नहीं गए, यानी आपकी फितरत बिल्कुल मुतासर ना हुई उस माहौल की गंदगी के बावजूद। तो फिर यहाँ वावा जदा का दौलन का क्या मानी है? आपको 3-4 मुख्तलिफ मानी जिसमें अरब लोग लफ्ज़ दौल को इस्तेमाल करते थे वो बताती हूँ, उसमें से फिर आप इंशाल्लाह इसको देख सकते हैं। लफ्ज़ी माना तो दौल का वही है जो गैर अलमकदूबी अलैहिम वलद्दालीन में हम पढ़ चुके, गुमराह होना, इसी तरह नावाकिफ़ होना, बेखबर होना। सिंपल सी बात समझे तो नबी सल्लम के लिए बेखबरी के मानी आते हैं कि आपको ख़ुद भी नहीं पता था कि कल आपके साथ क्या होने वाला है। अरबी ज़ुबान में दौल या दलालत का जो लफ्ज़ है ना, कब इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1 गफलत। सूरह तौहा 52 में आता है, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब ना किसी चीज़ से गाफिल होता है ना किसी चीज़ को फरामोश करता है। तो देखिए वहाँ तो अल्लाह के नाम के साथ दौल का लफ्ज़ आया है, اللہ کے لیے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ آنا, کئی غیروں نے آج اس نام پہ اللہ کے نبی پہ کیچڑ بھی تو اچھال دیا نا, کہا دیکھو اللہ کے نبی نعوذ باللہ پہلے بھٹکے ہوئے تھے پھر ہدایت پہ آئے, نہیں تھے بھٹکے ہوئے, بے خبری کے معنوں میں تھے, غافل تھے. آپ قرآن اور احکام شریعت کو پہلے نہیں جانتے تھے, پھر آہستہ آہستہ اللہ نے آپ کو قرآن بھی دیا اور شریعت کے احکامات بھی دیے. یہ سب سے اچھا معنی ہے اس کا. دوسرا ایک اور اس کا استعمال کیا, کہ جب پانی دودھ میں ملا دیا جائے اور پانی پر دودھ کی رنگت وغیرہ غالب آ جائے, یعنی پانی کے اوپر دودھ پڑ جائے, یعنی دھدلیالا وہ جو ہوتا ہے نا دودھیا سا پانی ہو جائے, تو عرب لوگ کہا کرتے تھے دلل ماؤفل لبن, کہ پانی دودھ میں غائب ہو گیا, یعنی پانی پتہ ہی نہیں چلا اور وہ دودھ کے اندر ہی مکس ہو گیا. تو اس استعمال سے پھر اگر اس کے معنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو مراد کیا ہے کہ آپ کفار مکہ کے درمیان گھرے ہوئے تھے, اللہ نے آپ کو قوت عطا فرمائی اور آپ کے دین کو غالب کر لیا. تیسرا معنی ہے لفظ دوال کا, ایسا درخت جو کسی وسیع صحرا میں تنہا کھڑا ہو اور مسافر اس کے ذریعے اپنی منزل کا سراغ پا لیں. کہتے ہیں نا وہ درخت ہے نا, اس سے دائیں طرف مڑ جانا, ادھر سے بائیں مڑ جانا, تو اس کو بھی عربی میں ادوال کہتے ہیں. اس سے پھر مفہوم لیں تو اللہ کے نبی کا کیا بنا, کہ جزیرہ عرب میں جو ایک سنسان ایک بالکل ریگستان تھا, کوئی درخت ایسا نہیں تھا, وہاں اللہ کے نبی ایک ایسا ہدایت کا درخت بن کے نکلے کہ وہاں سے پھر امت کو ایمان اور ہدایت کا پھل ملا. چوتھا اس کا استعمال ہوتا ہے, کسی قوم کے سردار کو خطاب کیا جاتا ہے, تو اصلی مخاطب قوم ہوتی ہے لیکن نام اس کا لیا جاتا ہے. تو یہاں پھر ہم کیا معنی لیں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی نا کہ آپ بھٹکے ہوئے تھے, یہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ آپ کی قوم بھٹکی ہوئی تھی اور ہم نے آپ کو ہدایت دی. وَوَجَدَكَ کا قَوْمًا ضَالًّا, آپ کی قوم بھٹکی ہوئی تھی پس ہم نے اس کو ہدایت دی. یہ بھی معنی جو ہے وہ مناسب معلوم ہوتا ہے. اور اس کے بعد پانچواں معنی کیا ہے, ضالًّا کا متخیرًا, حیران تھے آپ, آپ کی فطرت کسی چیز کو تلاش کرتی تھی, اسی لیے آپ غارِ حرا میں چلے جاتے, تنہائی میں رہتے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیرت کو دور کیا. چھٹا ایک معنی ہے ادوال بمانی محبت, کہ محبت سورت یوسف میں اس لفظ کو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا محبت کرتا پایا کہ ایسی شریعت دے دی کہ جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کس قسم کی بات جہاں لائے, کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. پھر اگلی نعمت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, آپ حاجت مند تھے اور غنی کر دیے گئے. عائل جو لفظ ہے نا اس کے دو معنی ہیں, نمبر ایک تنگ دست المفتقر, تنگ دست, اور دوسرا معنی ذو عیال, بچوں والے. دونوں کا معنی کہ آپ کے حالات بہت تنگ تھے, بچوں والے, آپ کی امت آپ کے ساتھ تھی, دولت آپ کے پاس تھی نہیں, حضرت ختیجہ نے اپنا سارا مال آپ کے سامنے پیش کر دیا اور رشتہ داروں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ اب یہ مال آج سے میرا نہیں, میرے شوہر کا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارا سامان اللہ کے نام پہ اللہ کے نبی کو دے چکے تھے, اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعد میں آپ کو اتنے مخلص ساتھی ملتے رہے کہ آپ نے کبھی بھی دین کے معاملے میں بھی تنگی کو محسوس نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی کوٹیشن پڑھ کے سناؤں گی. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے, مسلسل فاقہ کشی کے باعث پیٹ کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا. یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ بیتاب ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پیٹ کو بوسہ دیا اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ یوں فاقوں کی نوبت تو نہ آئے. اس پہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ, اگر میں چاہوں تو یہ سارے پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں, یعنی ایسا ہو سکتا تھا لیکن میں نے فقر کو پسند کیا. آپ کی دعا بھی تو ہے نا کہ اللہم احینی مسکیناً, اللہ مجھے مسکینی میں زندہ رکھنا اور مجھے مسکینوں کے زمرے میں قیامت کے دن لے کے جانا. کیوں؟ اس لیے کہ فقیر مسکین لوگ جو ہیں یہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے دوسرے لوگوں سے. تو جو اللہ سب کو دے سکتا ہے وہ اپنے نبی کو نہیں دے سکتا تھا, دیتا ہے, لیکن وہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسباب کے بغیر اللہ کیسے کام کراتا ہے. फामल यतीम फला तखर, बस किसी यतीम पर सख्ती ना कीजिए। कहर का लफ्ज़, यतीम के बारे में हम पीछे भी बात पढ़ते आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि तीसवें पारे में ये कसरत से आ रहा है। कहर का लफ्ज़ गलबे और जबरी तसल्लुत के लिए आते हैं, यानी किसी यतीम को ज़ईफ़ और लावारिस समझ कर उन पर सख्ती ना करें और उसके साथ अच्छा मामला किया जाए। पिछली सूरतों में भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी। फरमाया वअम्मस्सा इला फला तनहर, और जो आपसे मांगने आए उसको मना न कीजिए। आपके बारे में लोग गवाही देते हैं कि आपने कभी किसी मिस्कीन को ला नहीं कहा। ला तनहर, डांट नहीं करना, जो भी आ जाता आपसे लेके जाता। तिर्मिज़ी में एक रिवायत है कि एक दफ़ा 90,000 दिरहम बहरीन से आए। अल्लाह के नबी ने मस्जिद में एक चटाई बिछा कर उनका ढेर लगा दिया। नमाज फजर के बाद इनको बांटना शुरू किया और जोहर तक एक दिरहम भी बाकी न रहा। जब सब दिरहम बांट दिए तो इत्तेफाकन एक साइल आ गया। आपने कहा अब तो कोई चीज़ नहीं रही, अलबत्ता तुम किसी दुकानदार के पास चले जाओ और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे ले लो और उसे कह दो कि वो मेरे नाम पर लिख दे, मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे, कहने लगे अल्लाह के नबी आप इतनी ज़हमत क्यों गवारा करते हैं कि कर्ज़ लेकर साहिल को देते हैं, यदि पास नहीं था तो कर्ज़ लेके दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो आपको इसका मुकल्लफ़ नहीं किया, यानी मजबूर थोड़ी किया कि आप इतना दें। अल्लाह के नबी को ये बात पसंद ना आई, आपके चेहरे पर नागवारी के असरात नुमाया हुए। एक अंसारी भी उस वक्त आपके पास मौजूद थे, उसने अर्ज़ किया अनफिक वला तख्शा मन ज़िल अर्शी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल बेदरेग खर्च कीजिए और अर्श वाले परवरदिगार से किल्लत का खौफ मत रखिए। ये सुनकर अल्लाह के नबी का चेहरा खुशी से खिल गया और आप फूल की तरह मुस्कुराने लगे और कहा मेरे रब ने मुझे यही हुक्म दिया। वअम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का जिक्र फरमाया कीजिए। कौन सी नेमत? सबसे बड़ी नेमत तो इस्लाम, इसका शुक्र करना, इसको तहदीस नेमत कहते हैं। बड़ी मारूफ आयत है और मैंने लोगों को सर से पांव तक नुमाइश करते जेवर कपड़े की देखा, और जब वहें कोई कहे तो कहते हैं अल्लाह खुद कहता है अपनी नेमतें दिखाओ, जो जेवर कपड़ा सोना चांदी और पहन पहन के दिखाओ लोगों को। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ऐसी ही है तहदीस नेमत, लेकिन इससे बहुत बढ़ के शायद का मफहूम है। अल्लाह ताला बंदे को जो भी चीज़ देता है ना, वो उसके पास एक अमानत है और वो अल्लाह की दी हुई है। यहाँ लफ्ज़ तहदीस जो इस्तेमाल हुआ ये हद्दसा से है, हा दाल सा, जिसके मानी बात करने के हैं। अल्लाह की नेमतों की तहदीस क्या है? हदीस पढ़ के सुनाती हूँ, जो शख्स लोगों के एहसान पर उनका शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता। ये मुस्तन अहमद की रिवायत है। इस हदीस को सामने रखे तो सबसे पहले वामा बिनेमति रब्बी का फहद्दिस है, तो उसमें आप देखिए तो नबूवत और रिसालत सबसे बड़ी नेमत थी। नबूवत और रिसालत का इजहार कीजिए, छुपा के रखने की चीज़ नहीं है। दूसरी नेमत हिदायत की। तीसरी नेमत यतीमी के बावजूद किफालत। और चौथी नेमत थी मालदारी अता करना। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का असर अपने बंदे पे देखना चाहता है, लेकिन फ़ख्र और गुरूर के तौर पर नहीं, तकब्बुर के तौर पर नहीं, दिखावे के तौर पर नहीं, बल्कि इस तौर पर कि लोगों को पता चल जाए कि इनको अल्लाह ने दिया हुआ है, ये कोई भूखे नंगे लोग नहीं हैं। अब आप देखिए, दो लोग हैं, काम एक ही जैसा करते हैं, फ़र्क है दोनों बातों में। एक इसलिए खाता पीता पहनता ओढ़ता कि लोगों को पता चले कि मुझे रब ने छोड़ा हुआ नहीं है, मेरे पास सब है, कोई मैं मंगता नहीं हूँ, कोई मैं भूखा नहीं हूँ। ये तो है तहदीस नेमत। इसको इसका अपोजिट भी ले लें, बात सफ़ा दीन के नाम क्या होता है, ऐसा हाल हुलिया बनाओ कि लोगों को बस तरस ही आता रहे तुम पर, और लोग कहें ये तो बड़े बेचारे मजबूर गरीब यतीम मस्कीन लगते हैं, इन पर खर्च करो, ये झूठा तकवा होगा। बाद लोग ख़ास तौर पे दीन वाली जगह पे आते हैं तो बिल्कुल ही लुटे पुटे लगते हैं, और शादियों में जाएं तो पहचाने नहीं जाते, मसनू तकवा जो है वो बन के रहें। आपके पास अगर दौलत है तो क्या ये जुर्म है, ये गुना है? आप दौलत क्यों लेते हैं, क्यों है आपके पास, ताकि उससे और नेकियाँ कमाएं। अब हमने इसको देख लिया ना, मैं सोचती हूँ कि लिगत प्रोजेक्ट में हर बंदे ने अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा डाला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आप लोगों ही की क्लास का हिस्सा, और आपका हक भी था कि आपका होता, क्योंकि आपको नेमत ज़्यादा मिली। तो वाम बिनेमती रब्बी का फहदिस किस सूरत में दिखी? जो कुरान पढ़ा तो उसे सीना खुल गया। आप लोगों की खुशी के लिए या एक क्रेडिट के लिए किसी का सुना हुआ जुमला बोल रही हूँ कि उन्होंने कहा कि अब पता चला कि नमाजें पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वालों में फ़र्क क्या होता है, कि कुरान पढ़ के इतने दिल खुल जाते हैं। नमाज पढ़ने वाले बेचारे जो है वो बाज़ दफ़ा मस्जिदों के बिल भी नहीं दे पाते। फ़र्क होता है, ये आपकी नेमत है। 28वें पारे पे थे जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो आपकी तहदीस नेमत खुलनी चाहिए। सबीलुल खुदा वीकेंड क्लास अगर 5वें पारे पे, तो उनका हिस्सा उसमें कम होना चाहिए था डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास नेमत ज़्यादा है। आपको तो खुली आंखों से अब आखिरत दिखनी चाहिए, तो अल्लाह की नेमतें दिखनी चाहिए। करें खर्च, खूब खर्च करें अल्लाह के रास्तों में। पता चले अबू बकर सिद्दीक इस आयत के ऊपर ही खर्च किया करते थे। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत तफसीर ये की जाती है कि जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया वो अल्लाह के रास्तों में ज़्यादा खर्च करके दिखाए कि हाँ है मेरे पास, मैं कोई भूखा नंगा नहीं हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह जब हदीस के लिए जाते थे, नया जोड़ा पहन के जाते थे, यही आयत पढ़ते थे, वम भी नेमती रब्बी का फहदिस। कहा करते थे साहेब हदीस की शान के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, फिर बाद में वो कपड़ा सदका कर देते। तो इस्लाम का एक बिल्कुल नया रुख दिखता है हमें जब हम हकीकत में कुरान पढ़ते हैं। और उससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि बास लोग जो है वो सिर्फ इसलिए भी दरसों में और ये जो भी ख़त्म की महफिलें होती हैं उसमें अच्छे कपड़े नहीं पहन के जाते थे कि लोग कहेंगे कि जी लो जी ये तो दिखावा कर रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ़ बातें ना शुरू कर दें कि जी ये इस तरह की बातें करते हैं। अल्लाह को पता है, हम वो देखते हैं जो लोग दे रहे हैं या लोगों के पास है, असल हमारी किसी को नहीं पता। कुछ लोग देखने में बड़े गरीब लगते हैं, उनके पास लाखों करोड़ों होता है, और कुछ बेचारे बाहर बहुत खुले हुए दिखते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। तो नेमतों को इस्तेमाल करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और इसी तरह की कई और मुख्तलिफ तफसीर भी इस एक आयत की हुई। हमारे लिए इसमें यह बात है कि हर नेमत का शुक्र अदा किया जाए, फ़राइज़ अदा करे, गुनाहों से दूर रहे, और जो अल्लाह ने नेमत इल्म दी है उसको दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हकीकत में नेमतों की तहदीस की तौफीक अता फरमाए। लोगों को पता चले कि कुरान पढ़ा हुआ है, इसको मत छुपाइए। छुपाने से मतलब ये नहीं कि आप हर जगह सपारा लेके साथ चल पड़े, ये भी एक अजीब ही मसला है आप लोगों का। हर जगह सपारा साथ है, पढ़ना ना पढ़ाना बाद में ढूंढते फिरते हैं, वो फलां की गाड़ी में रह गया, वो फलां के घर रह गया, वो फलां। भाई जब पढ़ना नहीं था तो रोब क्यों डालते हैं? बस लोगों ने परस की जगह सपारा पकड़ा होता। एक हदीस सुनाती हूँ आपको, जो शख्स तुम पर कोई एहसान करे तो चाहिए कि आपसे भी हो सके तो उसके एहसान का बदला दें, और अगर माली बदला देने की इस्तेआत नहीं तो यही करो कि लोगों के सामने उसकी तारीफ करो, क्योंकि जिसने लोगों के मजमे में इसकी सना और तारीफ की तो उसने शुक्रगुजारी का हक अदा कर दिया। इसलिए अगर किसी की कोई तारीफ की जाए किसी अच्छे काम पे, तो जेलस नहीं होना चाहिए या ये नहीं सोच लेना चाहिए कि लो जी उनकी तो बड़ी तारीफें हो रही थी। कभी नाम लेके कर दे बंदा, कभी नाम ना लेके करे, कोई हर्ज नहीं। आपने नहीं इस नियत से काम करना कि मेरी तारीफ हो। कोई कर देता है किसी की तो उस वक्त ये कहना हाय इनकी बड़ी तारीफ होती है, नहीं, आप भी कोई ऐसा काम करें कि आपकी भी होने लगे। किसी वक्त उनकी तारीफ़ करना मकसद होता है, किसी वक्त तारीफ़ ना करना मकसद होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ हालात के साथ बदलती हैं। असल ज़िंदगी का खुलासा ये है कि आपको ठीक वक्त पे ठीक काम करना आ जाए, यकीन करें। कुरान तो पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं कर पाते कि सही तरह हिकमत से बात करें। ये ना देखें कि क्या कहना है, बल्कि ये देखें कब कहना है, कैसे कहना है और कितना कहना है। तबलीग के नाम पे भी ओवरडोज ना कर दें लोगों को, कि वो लोग जो है वो बेचारे आपको देख के भागे। एक तो तिलावत सुनाए।
بسم الله الرحمن الرحيم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.